एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी में झांक रहे हैं जिनका नाम लेते ही कान गिटार की आवाज सुनने लगते हैं और आंखों के सामने विद्रोह की एक तस्वीर सी बन जाती है। कीथ रिचर्ड्स। उनकी 2010 में आई आत्मकथा लाइफ, जो उन्होंने जेम्स फॉक्स के साथ लिखी थी, ये महज एक किताब नहीं है बल्कि रॉक एंड रोल के तूफानी समंदर का जैसे कोई नक्शा हो। इसे अक्सर सिर्फ एक सेलिब्रिटी संस्मरण से कहीं कहीं ज्यादा माना जाता है। सही कहा ना मैंने?
हाँ, बिल्कुल सही। लाइफ इसलिए खास है क्योंकि ये बहुत खरी है, एकदम बेबाक। कीथ रिचर्ड्स, जो मतलब 50 साल से भी ज्यादा वक्त से रोलिंग स्टोन्स के दिल की धड़कन रहे हैं, गिटार बजाते हैं, गाने लिखते हैं, कभी कभी गाते भी हैं,
हाँ,
वो सिर्फ संगीतकार नहीं है, वो तो एक तरह के सांस्कृतिक प्रतीक बन गए हैं, रॉक एंड रोल के उसूलों पर जीने वाले। और सच कहूँ तो एक ऐसे इंसान जिनका जिंदा रहना ही कई लोगों को हैरान कर देता है। ये किताब उसी हैरानी की कहानी है।
और कहानी भी क्या है, लगता है जैसे एक ही जिंदगी में न जाने कितनी जिंदगियां जी ली उन्होंने। ये सिर्फ एक बैंड के ऊपर उठने की कहानी नहीं है, बल्कि उस जज्बे की, उस विद्रोह की कहानी है जिसने उन्हें और उनके संगीत को एक पहचान दी।
हाँ बिल्कुल, ये एक इंसान की दास्तान तो है ही, पर साथ ही ये उस पूरे दौर का, उस जमाने का आईना भी है।
अच्छा,
ये किताब दिखाती है कि संगीत में कितनी ताकत होती है, कैसे वो जिंदगियां बदल सकता है, और साथ ही इंसान की वो जो क्षमता होती है ना खुद को मिटाने की, और फिर उसी राग से दोबारा उठ खड़े होने की, उसका भी एक सबूत है।
तो आज भी ये किताब, ये कहानी क्यों मायने रखती है?
देखिए, ये प्रामाणिकता की कहानी है, लचीलेपन की कहानी है, रचनात्मकता के जुनून की कहानी है, और हाँ, एक हद से ज्यादा जी गई जिंदगी के जो नफा नुकसान होते हैं उस पर एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं पड़ेगी, इसीलिए ये आज भी उतनी ही जरूरी है।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं सफर। कीथ रिचर्ड्स का जन्म हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद, इंग्लैंड के डॉटफर्ड केंट में, एक आम मेहनतकश परिवार में। मैंने सुना है कि उनके नाना ऑगस्टस गस ड्यूप्री का उन पे बड़ा गहरा असर था शुरू में।
हाँ, ये बात सही है। गॉस ड्यूप्री वो खुद एक संगीतकार थे, वायलिन, सैक्सोफोन, पियानो सब बजाते थे, और कहते हैं उन्होंने ही कीथ में वो संगीत की चिंगारी देखी थी। पहला गिटार भी उन्हीं ने लाकर दिया था कीथ को।
अच्छा,
और सोचिए वो इंग्लैंड कैसा रहा होगा उस वक्त, युद्ध खत्म हुआ था, राशनिंग चल रही थी, जगह जगह बमबारी के निशान थे, समाज भी मतलब काफी सख्ती से वर्गों में बटा हुआ था। शायद इसी माहौल ने उनके अंदर के उस बागी को हवा दी।
और बचपन एक छोटे से घर में बीता, माँ डोरिस थीं, पिता बर्ड थे जो अपनी जद्दोजहद में लगे रहते थे। स्कूल उन्हें कभी खास पसंद नहीं आया, ऐसा लगता है जैसे नियमों के खिलाफ जाना तो उनकी, क्या कहते हैं, फितरत में ही शामिल था।
हाँ बिल्कुल, और फिर उनकी जिंदगी में आया अमेरिकी संगीत का तूफान, एल्विस प्रेस्ली, चक बेरी, मडी वाटर्स, ये सिर्फ गाने नहीं थे उनके लिए, ये जीने का एक नया तरीका था, किसी दूसरी दुनिया का वादा। और वो लगन देखिए, कहते हैं वो घंटों रिकॉर्ड्स को धीमी गति पर चलाते थे ताकि एक एक गिटार का नोट पकड़ सके। उनकी असली पढ़ाई क्लासरूम में नहीं हुई, वो हुई रिकॉर्ड की दुकानों में, यूथ क्लबों में और लंदन के उस उभरते हुए ब्लूज सीन में।
और यहीं से कहानी में वो मशहूर मोड़ आता है, 17 अक्टूबर 1961, डार्टफोर्ड रेलवे स्टेशन।
जी,
एक तरफ कीथ रिचर्ड्स हाथ में चक बेरी का रिकॉर्ड, दूसरी तरफ मिक जैगर हाथ में मडी वाटर्स का रिकॉर्ड। बचपन के दोस्त जो अब फिर से मिले, और इस बार जुनून एक था, अमेरिकन ब्लूज और रॉक एंड रोल। कमाल का इत्तेफाक।
इत्तेफाक कहें या किस्मत, पॉप संगीत के इतिहास की सबसे अहम मुलाकातों में से एक मानी जाती है ये। इसी मुलाकात ने रोलिंग स्टोन्स की नींव डाली। शुरू में तो उनका इरादा बस अपने हीरोज को, अमेरिकी ब्लूज मास्टर्स को एक तरह से श्रद्धांजलि देना था।
हाँ।
उनमें संगीत को लेकर एक कच्चापन था, एक जुनून था, और वो ब्रिटेन के संगीत सीन में एक ज्यादा तीखी, थोड़ी खतरनाक आवाज लाना चाहते थे। ब्लूज की वो आत्मा ब्रिटेन लाना चाहते थे।
और इस आवाज को दुनिया तक पहुंचाने में उनके पहले मैनेजर एंड्रू लू गोल्डम, उनका भी बड़ा रोल रहा ना, उन्होंने वो एंटी बीटल्स वाली इमेज घड़ी।
हाँ बिल्कुल, वो बड़ी होशियारी भरी चाल थी। बीटल्स थे साफ सुथरे प्यारे लड़के, और स्टोन्स लंबे बाल, गुस्सैल तेवर, एकदम बागी, और ये चीज चल गई, लोगों को पसंद आई। शुरू के जो टूर थे वो अनुभव उनके लिए मतलब बिजली के झटके जैसा था। हजारों फैंस चीख रहे हैं स्टेज पर, वो जो ताकत महसूस होती है, उन्हें एहसास हुआ कि ये कुछ बड़ा हो रहा है। और इसी दौरान वो जैगर रिचर्ड्स की लिखने की जोड़ी बनी।
हाँ, वो पार्टनरशिप।
अक्सर ऐसा होता था कि कीथ संगीत का ढांचा तैयार करते, वो यादगार गिटार रिफ्स धुने और मिक उसमें शब्द डालते, अपनी आवाज का जादू भरते।
और वो आई कांट गेट नो सेटिस्फैक्शन के रिफ वाला किस्सा कि वो नींद में आया था, ये सच है?
हाँ, किस्सा तो यही मशहूर है कि आधी रात को उनकी आंख खुली, दिमाग में गिटार का वो तीन नोट वाला रिफ बज रहा था। पास में टेप रिकॉर्डर रखा था, उस पर उसे रिकॉर्ड किया। कहते हैं साथ में खराटों की आवाजें भी रिकॉर्ड हो गईं। फिर वो सो गए। सुबह उठकर जब टेप सुना तो शुरू में कुछ सेकंड वो रिफ था और उसके बाद 40 मिनट के खराटे, लेकिन वो कुछ सेकंड वो रॉक इतिहास का हिस्सा बन गए। ये दिखाता है कि रचनात्मकता कहीं से भी कभी भी आ सकती है।
कमाल है। खैर, किताब में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, स्टोन्स दुनिया के सबसे बड़े बैंड बन जाते हैं। लेकिन ये सफर सिर्फ कामयाबी और शोहरत का नहीं रहा। बहुत उतार चढ़ाव थे, नशे की लत, निजी जिंदगी में तूफान। बाद के सालों में उनके नजरिए में कुछ बदलाव आया।
देखिए, शुरू के वो जो जंगली साल थे उनके बाद बाद के दशकों में एक तरह का ठहराव दिखता है, या शायद कहें कि तजुर्बे से आया हुआ एक ज्ञान झलकता है। 90 और 2000 के दशक में चुनौती अलग थी। अब वो सिर्फ बागी नौजवान नहीं थे, वो लेजेंड का तमगा लगा चुके थे।
हाँ, उस इमेज के साथ जीना।
जी, और उस भारी भरकम इमेज के साथ प्रासंगिक बने रहना यह आसान नहीं था। लेकिन कमाल की बात यह है कि दशकों के नशे, भागदौड़, जिस्म पर जो असर पड़ा, उसके बावजूद संगीत का वो धागा कभी टूटा नहीं।
वो लगातार काम करते रहे, स्टोन्स के वर्ल्ड टूर चलते रहे, उनके अपने सोलो एल्बम आए, नए म्यूजिशियंस के साथ भी उन्होंने काम किया।
हाँ बिल्कुल, किताब जहाँ खत्म होती है वहाँ ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो गया। एक अल्पविराम जैसा महसूस होता है कि संभावनाएं अभी भी हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं, अपने फैसलों पर सोचते हैं, लेकिन कोई बड़ा पछतावा नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वो मानते हैं कि उन्होंने जो रास्ता चुना उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी, दोस्त छूटे, रिश्ते टूटे, कानून के चक्कर लगे, लेकिन उनका मानना है कि संगीत ने हर चीज को सही ठहरा दिया। वो जो बनाने और बजाने का मजा था वो हर कुर्बानी से बढ़कर था उनके लिए।
ये दिलचस्प नजरिया है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, उनके फलसफे और मूल्यों को समझते हैं। आपने कहा प्रामाणिकता, कीपिंग इट रियल, ये उनके लिए सबसे ऊपर था। इसका मतलब क्या था उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में?
ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके जीने का तरीका था। मतलब कि चाहे संगीत का फैशन बदल जाए, चाहे रिकॉर्ड कंपनियां कितना भी दबाव डालें, वो उस संगीत के प्रति ईमानदार रहेंगे जिसने उन्हें शुरू में प्रेरित किया था, वो ब्लूज, वो शुरुआती रॉक एंड रोल। उनका दुनिया को देखने का तरीका भी काफी रोमांटिक था और व्यक्तिवादी। जिंदगी उनके लिए लम्हों का एक सिलसिला थी जिन्हें पूरी शिद्दत से जीना है, चाहे वो लम्हे बुलंदियों के हों या गहरी खाइयों के। वो सेफ खेलने वाले नहीं थे, वो सच खेलने वाले थे।
और ये भी बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ संगीत की परंपरा, खासकर ब्लूज मास्टर्स के लिए इतना गहरा सम्मान, और दूसरी तरफ हर चीज पर सवाल उठाने, विद्रोह करने की प्रवृत्ति। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे?
शायद यही टकराव, यही तनाव उनकी रचनात्मकता की जान था। वो जड़ों की इज्जत करते थे, उन लोगों की जिन्होंने रास्ता बनाया, लेकिन वो ये भी मानते थे कि हर पीढ़ी का हक है कि वो संगीत को अपनी आवाज दे, उसे नया बनाए। परंपरा और नवीनता के बीच का ये जो खिंचाव है, वही उनकी गिटार रिफ्स में, उनके गानों में झलकता है।
तो क्या चीज थी जो उन्हें इतने सालों तक चलाती रही? प्रेरणा कहां से मिलती थी?
देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रेरणा तो संगीत ही था। उनके लिए ये कोई नौकरी नहीं थी, ये जुनून था, जैसे कोई पुकार हो अंदर से। दूसरी बड़ी ताकत थी रोलिंग स्टोन्स। ये बैंड उनके लिए एक फैले हुए परिवार जैसा था, उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा। मिक जैगर के साथ रिश्ते में चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ गई हो, कहते हैं उन्होंने कभी भी गंभीरता से बैंड छोड़ने का नहीं सोचा।
और एक चीज जो बहुत साफ दिखती है किताब में, वो है आजादी की जबरदस्त इच्छा, किसी के भी कंट्रोल में ना आने की जिद।
बिल्कुल, चाहे वो शुरू के मैनेजर हों या बाद में बड़ी बड़ी रिकॉर्ड कंपनियां, सरकारें या समाज के नियम, कीथ हमेशा अपनी शर्तों पर जीना चाहते थे। उन्होंने कई बार सुरक्षा या पैसे के ऊपर अपनी कलात्मक ईमानदारी और अपनी आज़ादी को चुना। ये रास्ता खतरनाक था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यही उनकी पहचान भी बना।
और मुश्किल हालात से निपटने का उनका तरीका भी बड़ा अजीब है। ऐसा लगता है जैसे वो उनसे भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं।
हाँ, उनका रवैया काफी हद तक यथार्थवादी कहा जा सकता है। ड्रग्स के केस में पकड़े जाना, सेहत की बड़ी परेशानियां, निजी जिंदगी में उथल पुथल, वो इन सबको जिंदगी की कीमत मानते थे जो उन्होंने खुद चुनी थी। वो मुश्किलों को शायद अनजाने में ही सही आगे बढ़ने के मौकों की तरह देखते थे।
और उनका वो जो लचीलापन है वो तो लगभग एक कहानी बन चुका है। इतनी बार मौत के मुंह से वापस आना, नशे की इतनी लंबी हिस्ट्री के बाद भी टिके रहना, इसके पीछे सिर्फ जिस्मानी ताकत थी या कुछ और भी?
जिस्मानी बनावट तो मजबूत रही ही होगी यकीनन, लेकिन सिर्फ वो नहीं, उनका अपने संगीत के मिशन में जो अटूट विश्वास था, संगीत का जो सहारा था और दोस्तों का जो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम था, मुझे लगता है इन सब चीजों ने मिलकर उन्हें संभाले रखा। वो मुश्किलों से सीखते थे पर टूटते नहीं थे। शायद मौत के इतने करीब से बार बार गुजरने ने उन्हें जिंदगी की कीमत और गहराई से समझा दी थी। उनका फलसफा शायद यही लगता है कि आप रिस्कों को खत्म नहीं कर सकते, आप उन्हें बस गले लगा सकते हैं।
चलिए अब उन तीन खास मोड़ों की बात करते हैं जिन्होंने कीथ रिचर्ड्स की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पहला तो शायद वही डार्टफोर्ड स्टेशन वाली मुलाकात ही होगी, है ना?
हाँ, जाहिर है। 1961 की वो मुलाकात सिर्फ दो पुराने दोस्तों का मिलना नहीं था जिनके शौक मिलते थे, वो दो ऐसे लोगों का मिलना था जिनका संगीत को लेकर नजरिया एक था, कि संगीत क्या कमाल कर सकता है, कितना ताकतवर हो सकता है। यहीं से उस पार्टनरशिप की शुरुआत हुई जिसने न सिर्फ रोलिंग स्टोन्स को बनाया बल्कि रॉक एंड रोल का पूरा इतिहास बदल दिया, ब्रिटिश रॉक इन्वेजन की लहर पैदा की।
सही। दूसरा टर्निंग पॉइंट जो काफी बदनाम भी हुआ वो था 1967 का रेडलैंड्स ड्रग बस्ट, जब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, फिर मुकदमा, सजा।
हाँ, वो घटना सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं थी, उसने कीथ रिचर्ड्स और रोलिंग स्टोन्स की पूरी इमेज बदल दी। वो अब सिर्फ बागी रॉकस्टार नहीं रह गए थे, वो काउंटर कल्चर यानी उस वक्त की जो स्थापित व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठ रही थी उसके शहीद या आउटलॉ जैसे बन गए।
विद्रोही प्रतीक।
जी, स्टोन्स अब सिर्फ एक बैंड नहीं थे, वो पीढ़ियों के टकराव का, युवा संस्कृति की चुनौती का सिंबल बन गए। और कीथ ने इस इमेज को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। इस घटना ने सरकार और अथॉरिटी के प्रति उनके मन में जो शक था उसे और पक्का कर दिया।
और तीसरा, शायद सबसे अंधेरा और निजी तौर पर सबसे मुश्किल दौर, 1977 में टोरंटो में वो ड्रग्स वाली गिरफ्तारी।
हाँ, वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट था। हेरोइन रखने और तस्करी के इरादे से गिरफ्तारी हुई। कनाडा में उन्हें उम्र कैद तक हो सकती थी। ये वो वक्त था जब उन्हें एहसास हुआ कि नशा अब कोई मजे की चीज या क्रिएटिविटी बढ़ाने का साधन नहीं रहा, बल्कि ये सिर्फ जिंदा रहने की जरूरत बन गया है। उनकी जिंदगी की लगाम पूरी तरह हाथ से छूट चुकी थी।
लेकिन वो इस बहुत गहरे गड्ढे से बाहर निकले, ये कैसे मुमकिन हुआ?
उन्होंने इलाज करवाने के लिए हामी भरी और हेरोइन की लत से बाहर निकलने की वो जो बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है उसे शुरू किया। ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर नशे से आज़ादी नहीं थी, ये दिमागी तौर पर एक नशेड़ी की पहचान से निकलकर दोबारा संगीतकार के तौर पर खुद को देखने की लड़ाई थी। एक तरह का पुनर्जन्म था वो।
इतने उतार चढ़ाव, इतनी शोहरत, इतने खतरे, कीथ रिचर्ड्स की जिंदगी से हम जैसे आम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या सबक मिलते हैं?
सबसे बड़ा सबक तो शायद इंसान के लचीलेपन का है, उसकी रेजिलियंस का। कीथ रिचर्ड्स की जिंदगी ये दिखाती है कि कितने भी मुश्किल, यहां तक कि नामुमकिन लगने वाली सिचुएशन से भी उभरना और जिंदा रहना मुमकिन है। ये हार न मानने की एक कमाल की कहानी है।
लेकिन ये एक चेतावनी की तरह भी है ना? कि हद से ज्यादा शोहरत और उस तरह की लाइफस्टाइल की एक कीमत होती है।
बिल्कुल, ये उस चमक दमक के पीछे का अंधेरा भी दिखाती है और साथ ही ये जो लंबी चलने वाली क्रिएटिव पार्टनरशिप्स होती हैं उनकी जटिलताओं को भी सामने लाती है। खासकर मिक जैगर के साथ उनका रिश्ता, उसमें प्यार भी था, नफरत भी, कंपटीशन भी और एक दूसरे के बिना अधूरे होने का एहसास भी, सब कुछ था उसमें।
और ये भी कि कैसे गहरी से गहरी अराजकता के बीच भी इंसान स्थिरता के लिए कोई ना कोई लंगर ढूंढ ही लेता है। उनके लिए वो लंगर पहले संगीत था और शायद बाद में परिवार भी बना।
हाँ, और एक बहुत जरूरी सबक ये भी है कि बदलाव और सुधार की उम्मीद किसी भी उम्र में की जा सकती है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लत पर काबू पाया, ये दिखाता है कि इंसान चाहे तो अपनी दिशा बदल सकता है। ये विद्रोह और जिम्मेदारी के बीच वो जो एक संतुलन बनाने की कोशिश होती है उसकी भी कहानी है।
ये जो संघर्ष और जीत की बातें हैं, ये कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़ती हैं। अपनी मुश्किलों का सामना करना, रिश्तों की गांठें सुलझाना, जिंदगी में कोई मकसद ढूंढना और ये उम्मीद रखना कि हम बदल सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, ये अनुभव तो सबके हैं।
निश्चित रूप से, इसीलिए उनकी कहानी सिर्फ एक रॉकस्टार की कहानी नहीं रह जाती, ये एक इंसान की कहानी बन जाती है जिसमें हर सुनने वाला अपने अक्स का कोई ना कोई हिस्सा देख सकता है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें तीन सबसे अहम बातें, तीन निचोड़ निकालने हों जो सुनने वाले अपने साथ ले जा सकें, तो वो क्या होंगी? चलिए पहले एक भावनात्मक पहलू से शुरू करते हैं।
भावनात्मक तौर पे सबसे ताकतवर सबक शायद यही है कि दशकों तक खुद को तबाह करने वाले रास्ते पर चलने के बाद भी न सिर्फ जिंदा रहना बल्कि एक तरह से फलना फूलना भी मुमकिन है। पॉजिटिव बदलाव के लिए कभी भी देर नहीं होती। ये उम्मीद की और इंसान के जज्बे की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी एक बहुत असरदार कहानी है।
और अगर बौद्धिक स्तर पर देखें, कोई ऐसी बात जो सोचने पर मजबूर करे?
बौद्धिक नजरिए से देखें तो सबसे जरूरी निष्कर्ष ये निकलता है कि सच्ची क्रिएटिविटी के लिए अक्सर दो चीजें एक साथ चाहिए होती हैं। एक तो परंपरा की गहरी समझ और दूसरा उस परंपरा को तोड़ने, एक्सपेरिमेंट करने और जोखिम उठाने का साहस। अपनी जड़ों की इज्जत करना और फिर भी कुछ नया, कुछ अपना बनाना, इसके बीच संतुलन साधने की कला। और ये बात सिर्फ संगीत पर नहीं, जिंदगी के कई और हिस्सों पर भी लागू होती है।
बिल्कुल। और आखिर में एक ऐसा सबक जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपनाने की सोच सकते हैं, एक प्रैक्टिकल यूनिवर्सल लेसन।
सबसे प्रैक्टिकल और सबके लिए लागू होने वाला सबक शायद ये है कि प्रामाणिकता, यानी अपने सच के साथ खड़े रहने के लिए हिम्मत भी चाहिए और जिम्मेदारी भी। अपने नजरिए का, अपनी आवाज का सम्मान करना जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन साथ ही अपने कामों के नतीजों को और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना भी उतना ही जरूरी है। अपनी शर्तों पर जीना और फिर उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना, ये एक मुश्किल संतुलन है, पर शायद इसे हासिल किया जा सकता है।
अपनी शर्तों पर जीना और उसकी जिम्मेदारी लेना, हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद यही कीथ रिचर्ड्स की लाइफ का सबसे बड़ा सार है। ये सिर्फ एक रॉक लेजेंड की कहानी नहीं है, ये जिंदगी को उसकी पूरी शिद्दत से जीने और उसके अच्छे बुरे नतीजों को सीने से लगाने की कहानी है।
और ये एक सवाल भी पीछे छोड़ जाती है ना, कि क्या महान कला और रचनात्मकता के लिए हमेशा उथल पुथल और खतरे मोल लेना जरूरी है, या फिर स्थिरता और सुकून में भी उतनी ही गहरी कला पनप सकते हैं? सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।